ये है 25590 का प्रकाश शुक्ला है। पेज नंबर 6 रजिस्टर नंबर 7 गीत है आखिर वह दिन आया आज। मीठे मीठे चीज चिल्ड्रन मीठे मीठे सिटी ये बच्चों ने गीत सुना। क्या सुना? कौन सा दिन? जिस दिन का प्रेसर जन्म के इंतजार था। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प किस मासूम को याद किया है? आखिरी वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। मासूस बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं वो मासूस है, ये भी कोई नहीं जानती। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बनाई दी है, ये इतना भी नहीं जानते क्या? ये आत्मा है उस परमात्मा की आशिक है और वो हमारा माफी है। तो क्या समझती है? तो ये भी समझता है कि हम मासूक हैं और परमात्मा हमारा आशिक है। तो इतना तुच्छ बुद्धि बना दी है खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए, तो तुच्छ बुद्धि अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अब ये सिर्फ तुम ही जानते हो क्या कि हमारे धर्म की मुख्य धारणा है सहनशील का। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सत्युग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य था, उस समय था सुख था। सुख को याद करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पास हो गए, सत्युग की आय कितनी थी ये भी कोई नहीं जानती। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर के समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाई दी है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचे और रचना की आदि मध्य अंत को हम जान गए। कल नहीं जानते, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते उतना खुशी में रहते, तो खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम सबके अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर तो हमने गवाई दी। अभी पतित तो बन पड़े हैं, सतयुग को पतित तो नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मन से कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो कैसी दुनिया हुई? ये तो पतित दुनिया हुई। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने, क्यों नहीं ऊंच हो सकता? ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे तो बने नहीं है रावण राज्य में। रावण के बच्चे जरूर नीच से नीच कुछ बुद्धि होनी, तुम बच्चों ने बाप को जाना है तो भी नंबरवार पुरुषार्थम कर, अपने दिल से सवेरे उठ करके पूछो अमृत वेले का समय अच्छा है, सवेरे अमृत वेले बैठ करके ये ख्याल करो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉड फादर तो कहते ही है, फिर परम पिता परमात्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वो हमको मिला है, हम तुमसे वेद का बदला ले रहे हैं, वह है लौकिक बाप और ये है देहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उसे देहद के बाप को याद करते हैं। तो बच्चों का बाप पतियों का पति वो हो गया। भारतवासी ये कहते हैं क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ, कब संगम युग में बनता हूँ प्रैक्टिकल में, तो गायन चला आता है परमात्मा के लिए, मेरी खास भारतवासियों का गायन है क्या कि वो बाप भी है तो पतियों का भी पति है। तुम्हारा उसे पति के साथ बुद्धि योग तोड़ाए,
हम अपने साथ लगाता हूँ,
ये तो तुमको जन्म जन्मांतर दुख देते। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते, अभी फिर तुमको भी पूरी ससुर घर ले जाता हूँ, ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा संगारा जाता है, अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सज करके विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बन गए, कहाँ बाप के पास संगम युग में तुम आए ही हो विश्व का मालिक बन गए। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे जब कि सती था, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं, अभी क्या है? अभी तो हम सेवाधारी हैं, अभी हम कोई मालिक पने में नहीं है। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगयुगी हैं, फिर हम सत्युग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। तो संगयुगी तो होते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण कोई मालिक राजा नहीं होते हैं, ब्राह्मण तो होते हैं सेवाधारी। तो ये बात है, तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए कि बाबा हमको विश्व की बातें दे गए, हमको राजा रानी बनाए गए, अब हम सब के ऊपर कंट्रोल चलाए। तो तुम जानते हो कि बाबा विश्व की बातें देने वाला आया है, अभी दी नहीं है, अभी आया है। तो जरूर कोई ऐसे भी होंगे जो अपने को समझते होंगे कि बाबा हमको राजाई दे दिया, अभी संगम युग पर वह बाप आए, मनुष्य तो घोर अंधियारे में, जो समझते हैं कि हमको राजाई मिल गई। कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है, कोई फिर ऐसे भी जो कहते हैं अभी सत्युग आने में तो बहुत लंबा समय है। तो अब ये कैसे हो सकता है, वो ऐसे समझते हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, अज्ञान नींद में सोए हुए, यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में तो कोई ऐसे नहीं कहता कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, सब कहते हैं बिना सामने खड़ा है, है? कहता है क्या? मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन कर्म और चलन ऐसे चलते हैं जिससे लोग ये समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में क्या भरा हुआ है। क्यों? मान लो कोई महल माड़ी बना रहा है और उसमें अखूट पैसा लगा रहा है, ढेर सारा लोहा, ढेर सारा सीमेंट, उससे क्या समझ जाएंगे लोग? क्या समझेंगे? कहते हैं ये, लेकिन अंदर से नहीं समझते कि अभी दुनिया का बिना सामने खड़ा है। क्योंकि अगर ये समझते हो कि दुनिया का बिना सामने खड़ा हुआ है, तो ये इतने मजबूत महल मारियां अटारियां क्यों बनाते चले जाते? इनकी फिर क्या दरकार? तुम जानते हो अभी विश्व की बात सही देने वाला आया है संगम युग पर। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, अज्ञान युग में सोए हुए। सुलाया किसने है? भक्ति मार्ग के गुरु लोगों, भक्ति मार्ग की ड्यूटी करने वाले भी कोई गुरु लोग होंगे? भक्ति मार्ग तो 2500 वर्ष चलता है द्वापर कलयुग में, लेकिन उसकी शूटिंग कब होती है? रिहर्सल कब होती है? संगम युग में। तो संगम युग में बाप डायरेक्टर आकर के रिहर्सल कराते हैं, उस ड्रामा की शूटिंग कराते हैं। तो कोई ऐसे गुरु भी हैं जो अज्ञान युग में सुलाने की शूटिंग कराते हैं उन्हीं के डायरेक्शन से। भक्ति मार्ग के मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनते जाते हैं, जहाँ ढेर के ढोर लोग इकट्ठे होते। तो कितने सुलाया इन भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने? शास्त्रों सत्संगों में जाते हैं, समझते हैं हम ज्ञान सुनने जाते हैं। ये सत्संग है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उनमें किस लिए जाते हैं? समझते हैं हम ज्ञान सुनने जाते हैं। परंतु ज्ञान दाता तो एक ही बात है, उनके कर्ता धर्ता तो अलग अलग लोग हैं। कोई एक तो है नहीं। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ही ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। और कोई मनुष्य मात्र के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे सारे विश्व की सदगति हुई हो। तो ब्रह्मा के पास तो था क्या ज्ञान? फिर रिजल्ट क्या बताया? तो सारे विश्व की सदगति होनी चाहिए। तो जब सारे विश्व की सदगति नहीं हुई और ज्ञान दाता चला गया, तो ऐसे तो दुनिया में बहुत से मनुष्य महान महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने ज्ञान सुनाया या धर्म की स्थापना की, आए और चले गए और दुनिया नीचे भी नीचे गिरती रही। सदगति किसी की हुई नहीं, और ही ज्यादा दुर्गति होती जाती है। तो मनुष्यों के पास ये ज्ञान नहीं है सदगति का। इस समय सारी दुनिया सत्यों सहित तमो प्रधान है। अब कोई कहे इसका क्या प्रूफ कि सदगति का ज्ञान है? ब्रह्मा के पास नहीं था, ब्रह्मा कुमारियों तथा कथित के पास नहीं है, उन ब्राह्मणों के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, इसका क्या प्रूफ? बिना प्रूफ और प्रमाण के तो कोई मानने वाला हो नहीं सकता, और होता है तो मूर्ख है। इसका प्रूफ बताओ, तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ है क्या? कहाँ बनाया? जिस तक में आए उसके तक तो सत्व प्रधान बन गए क्या? कितना माता
वो ही जसो प्रधान नहीं बन गए, जसो प्रधान बन जाए तो फिर बीमारी मारी ना हो, नहीं तो करवा की व्यवस्था हो जाए। ब्रह्मा के जन्म में नहीं आते थे क्या? अच्छा माँ का रूप था तो आते तो थे, ज्ञान तो सुनाया, ज्ञान माँ भी तो पहले पहले ज्ञान सुनाती है ना।
माँ को भी विकास होने वाला बात सुनो।
अच्छा ठीक, फिर गया कहाँ? कुछ भी तो बात ही नहीं थी।
अब जो है
ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। हाँ किसी के पास प्रूफ हो तो बताओ भाई।
तत्व
पावन बने का तत्व पावन बने हो तो हम मान लेंगे। बीमारी ब्रह्मा बाबा को बीमारी रहो तो तुम्हारे ब्रह्मा बाबा को बीमारी नहीं।
अरे जिसके ब्रह्मा बाबा आते हैं
ये सोचे नहीं तो वो ब्रह्मा बाबा कहाँ बीमारी समझते थे बीमारी। उन्होंने कभी क्लास अपना मिस कर दिया क्या? ये कोई प्रूफ नहीं होते। प्रूफ ये है कि हर कार्य सूक्ष्म से स्थूल की ओर संपन्न होता है। पहले सूक्ष्म में सदगति होगी फिर स्थूल में सदगति होगी। मन बुद्धि से सदगति की शुरुआत होगी क्योंकि मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। अगर मन बुद्धि इसी दुनिया में लगी पड़ी है तो समझ लो दुर्गति हो रही। देह और देह के संबंधों की दुनिया में लगी पड़ी वो ही याद आते रहते। अगर विचार सागर मंथन चलता है तो समझ लो सदगति हो रही है। तो ये प्रूफ है इस बात का कि परमात्मा बाप आया हुआ है। तो उसका ज्ञान सुनने से अगर बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है किसी का तो उनकी क्या होने लग पड़ी? उनकी सदगति की शुरुआत होगी क्योंकि पहले काम सूक्ष्म में संपन्न होगा फिर अब अपना अपना देख लो वो दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा। जिसका मनन चिंतन मंथन चलता होगा वो दूसरों को भी देखने में आएगा। ये व्यक्ति तो कुछ बदल गया। तो मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों का ही समोप्रदान है। समोप्रदान की बुद्धि तो चल ही नहीं सकती। इसमें रहने वाले भी समोप्रधान हैं। क्या सातवां पेज 38-90 दिया है। नई दुनिया है ही सकी उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया इनको देवताओं को जीत लिया तो देवताएं कमजोर हुए या पावरफुल हुए? देवताएं कमजोर हो गए तो अब देवताएं कैसे जीत जाएंगे? कहते हैं दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए थे। दैत्य पहले पैदा हुए थे तो वो बड़े थे। क्या दैत्य पहले पैदा हुए और देवता बाद में पैदा हुए? पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ? कौर और यादवों का। और फिर बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ? पांडवों का। पांडव गुप्त रहे तो बात कहाँ हुई? गुरु संगम इसकी ही बात है। छोटा बच्चा तो कमजोर ही होता है। फिर बाप जिसका साथी है वो पावरफुल हो जाता। तो बाप युग से जब से रावण राज्य शुरू हुआ उस समय बाप तो मौजूद होता नहीं। तो रावण के हाथ में देवताओं की राजाई चली गई। यहाँ उसकी शूटिंग हो जाती है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास।
क्योंकि अब बाप आया हुआ है। बाप हम को दादा द्वारा पर की बादशाही का वर्षा देते घर से पैदा हुआ था बच्चे जब पैदा हुए तब तो बाप साथ में है नजरों के सामने है ना छोटा बच्चा बड़ा बच्चा है आतताई बन कैसे जाएगा बाप के सामने बाप तो आया हुआ है ना अम्मा की गोद में तुम चाहे जो कुछ कर ले बाप हमको दादा द्वारा कर की बादशाही का वर्षा देते हैं तो तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप के पास क्यों क्या कहते हो क्यों हम जाते हैं बाप के पास क्यों जाते हैं ये मतलब नहीं है अरे अगर उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी तो छोटा बच्चा क्या रहेगा हम जाते हैं बाप के पास हम नहीं तुम्हारी दबाव में क्यों करेंगे है आधुनिक बच्चे दबाव में हैं तो देवताई बच्चे क्या कहेंगे लड़ेंगे नहीं क्या कहेंगे हाँ हमारा तुम्हारे दबाव में हम जाते हैं बाप के पास तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप के पास वो थोड़े कहते हैं कौन आ तो थोड़े ही कहेंगे कि हम जाते हैं बाप के पास बाप तो स्वर की बात चाहिए देंगे और क्या देंगे बाप क्या देंगे स्वर की बात चाहिए तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना तो बाप स्वर की बात चाहिए देते हैं और वो गुरु लोग वो तो नरक की बात चाहिए देते हैं परंतु माया तुम बच्चों को भी बोला है देखी क्या तो बाप स्वर की बादशाही देते हैं स्थाई खुशी रहने नहीं देती है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो यूं से पढ़ पाएंगे न पढ़ेंगे फालतू फालतू बातों में लगे रहेंगे सुनने और सुनाने और न दूसरों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा रहे जाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति पहचाना एक ही बार पहचानना पूरा एक ही बार होता है तो एक ही बार में पहचानना चाहिए ना तो बार बार पहचानना और बार बार भूल जाना है सभी आत्माओं का बाप एक है वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है तो सब आत्माएं तो एक जैसी पहचानने में हो नहीं सकती जन्म जन्म त्रेसठ जन्म पता नहीं कौन कौन सी आत्माओं का संग रहा है तो जिन जिन आत्माओं ने जहाँ जहाँ प्रभावित किया होगा वो आत्माएं यहाँ भी किन किन चीजें हम प्रभावित कर देंगे तो भूल जाएंगे तो पहचानना एक ही बार चाहिए ना सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे आया तो सब आत्माओं का बाप है ये तो इम्पॉसिबल बाप तो पढ़ाने आते हैं पढ़ाई कभी लाउड स्पीकर पर नहीं होती है क्या ऐसे नहीं कि सब बच्चे मिलने आ जाओ लाउड स्पीकर चारों तरफ लगाई दिए जाए और बाप आकर की पढ़ाई पढ़ावे तो प्रश्न कैसे पूछेंगे पढ़ाई में तो प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई नहीं होती कोई कहे गुलजार दादी में बाप आते हैं तो वहां तो लाउड स्पीकर लगा होता है लाउड स्पीकर पर बाप आकर कभी पढ़ाई नहीं पढ़ा ब्रह्मा की तो ला सकती है और कोई मनुष्य आत्मा आ सकती है, लाउड स्पीकर पर पढ़ाई सकती है, भाषण दे सकती है, लेकिन परमात्मा बाप सुप्रीम सोल लाउड स्पीकर पर पढ़ाई नहीं पढ़ाई। टीचर पूछेंगे क्या बनना चाहते हो, वो तो लाउड स्पीकर पर पूछेंगे, तो बच्चे कहाँ कैसे आवाज पहुँचेंगे उन पर, बच्चों की आवाज कैसे पहुँचेगी, तो कैसे रिस्पॉन्ड देंगे उनमें, तो स्पीच कर सकते हो लाउड स्पीकर पर, पढ़ाई पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती। तुम सब टीचर को कहा जाता है ना जिनका पाठशाला, टीचर गीता पाठशाला, गीता किसने सुनाई, भगवान ने सुनाई, तो गीता पाठशाला नाम क्यों पड़ा, जब गीता का ज्ञान भगवान ने आकर के दिया है तो गीता पाठशाला नाम पड़ा, तो ये अक्षर भी कामन है, ये तो विचित्र है ना, कैसे हैं किसने गीता सुनाई, अब ये किसने की तो पाठशाला है जी, क्या ये जो पाठशाला जहाँ बैठे हो वो कोई किसी की स्थापना की हुई पाठशाला तो है, किसी की कोई नहीं, ये पाठशाला स्थापना नहीं थी, कृष्ण की आत्मा तो यहाँ पढ़ रही है, क्या कति में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या, वहां तो पढ़ने पढ़ाने की बात होती नहीं, कृष्ण तो हुआ ही है कति में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल नहीं सकता, ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ, एक सेकंड में न मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पार्ट में जाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता, तो कितनी समझ की बात है, ड्रामा है ना, पार्ट रूपी होता जाता है, बाकी वो शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के, आधा कल तो भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ, तुम जानते हो 5-4 वर्ष पहले राज्य करते थे सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था, अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम सुख धाम और तीसरा दुख धाम, तो ये भारतवासियों के लिए ही है क्या, तीनों भारतवासियों को ही आकर के सुख धाम का रास्ता बताता, कंप कंप फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ आता रहूंगा, इनकी इंद नहीं हो सकती, तुम चक्कर लगा कर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है, अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों की चतुर्थी, अब बाप को रचयिता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा को कोई रचता है, रचयिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर के रचती है, रचयिता किसका है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान में कन्वर्ट करता है, सतयुग में जिनों का राज्य था उन्होंने फिर गवाए, उन्होंने कोई वेद पढ़ाता है, बच्चों को एडाप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते, क्या तुम बुद्धि में ये समझ लो कि साधु संत के पास आए हैं, साधु संत कहते हैं ये तो साधु आदमी है, तो किस अर्थ में कहते हैं, सीधा साधा साधु सज्जन कोई साधु संत तुमको नहीं पढ़ाते हैं तो तुम्हें दर्दपैनी हो जाए। कोई भजन पढ़ाता है क्या?
बाप
है? हाँ, बाप पढ़ाता है। बाप का मतलब अम्मा नहीं, एक बच्चा गलती भी करता जाए और उस बच्चे को गोद में इंसान भी देती जाए। हाँ, तो तुमको कोई साधु संतारी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना, जिसको याद किया जाता है जिसको याद करेंगे, जितना कुछ दिया हो प्राप्ति हुई हो जरूर आएंगे भी ना। ये भी जिसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, जरूर पहले कोई प्राप्ति हुई है तो अब याद करते हैं, तो जरूर पति के पावन बाप आते हैं। क्यों आते हैं? याद करते हैं तो पतितों को पावन बनाने वाले बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वो तो समझते हैं, हिंदी हो गए और फिर तो आ नहीं सकता। याद सिर्फ पति को पावन से करते हैं, हम आत्माओं को फिर से बनता दे। अभी तुम बच्चों को इतना सी आई है, बाबा आया हुआ नई दुनिया की स्थापना करेंगे। आया खाए के लिए आया है, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, और आए और चला जाए और नई दुनिया की स्थापना हो गई तो बाप थोड़े ही हुआ, कौन हुआ है? कौन हुआ फिर? अम्मा हुई, बाप तो हो नहीं सकता। बाप की सिवाय नई दुनिया बनाई नहीं सकता कोई, नई दुनिया नया संगठन नई सरकार, तो बाप ही आकर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने सतह पर रजोगुण में नहीं आवेंगे, वो धर्म गुरु धर्म पिता है, कब आवेंगे? रजो और तमो समय में आवेंगे। तो जैसे समय में आ गएंगे वैसा वो अपना पार्ट कर जाएंगे। बाप कब आते हैं? संगम रात्रि के 12 बजे, आधी रात पूरी हो जाती है और दिन की शुरुआत भी हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम माता और नारी सुनकर, एक बात ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाई देता है। और इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है, खुद नहीं बनता है, ये भी खास बात है। क्या? जो बाप का पार्ट होगा, जो भी स्वरूप दिखाया जाता होगा संसार में, उसकी विशेषता क्या होगी, चरित्र क्या होगा, तो वो खुद तो फकीर बन के रहेगा और दूसरों को और बच्चों को राजा ही देता है, खुद नहीं बनता है। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मन से कहते हैं हम फल की आस नहीं रखते, हम तो निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे नहीं होता। क्या? कि कोई मनुष्य कर्म करे और उसका फल उसको न मिले। जैसा संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता जरूर है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर के फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। उनके ऐसे संस्कार होते हैं जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल दे रहे हैं। क्या मिसाल देते हैं? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। लड़ाई यहाँ लड़ी, अब यहाँ इस नरक की दुनिया में स्वर्ग तो है नहीं, तो स्वर्ग में जाएगा कहाँ से? तो कहाँ की बात है, ये तो इस महाभारी महाभारत विकारों की युद्ध की बात है। इसमें लड़ाई लड़ते लड़ते अगर कोई मर भी गया, इस ज्ञान से वंचित हो गया, बाप का बच्चा बना और बन करके निकल गया। जो युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मर भी जाते हैं तो उनको जन्म कहाँ मिलेगा? उनको अमर लोक में जन्म मिलेगा, अमरनाथ के यहाँ। कहाँ जन्म मिलेगा? अमरनाथ। तो यज्ञ के आदमी तो बहुत ही महात्मा मर गए ज्ञान छोड़ छोड़ करके चली गई, बाप की बनी और फिर चली गई, तो उनका अंजाम क्या होगा? फिर जरूर उनका दोबारा जन्म होगा, ब्राह्मण जन्म देंगी, ब्राह्मण बनेगी और फिर बन करके किसके बच्चे बनेंगे? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के बच्चे नहीं बनेंगे, वो बच्चे किसके बनेंगे? अमरनाथ बाप की अमर बच्ची बने। उन्हें कोई ज्ञान में मारने वाला पैदा नहीं हुआ। और ये दूसरी बात समझे रही, संजीवनी बूटी गुमानी पड़े, अचेत हो जाए लेकिन मर नहीं पड़े। क्या बालक है? हाँ बात हो गए, रात दो रात के ना अचेत हुई गई थी। तो सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संसार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु वो तो इसका अर्थ नहीं करे। स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना, स्वर्ग तो बाप वक्त कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते, गीता में क्या लिख दिया है, सुनाते क्या है? कहते हैं भगवान वाच में स्वर्ग व्यापी, गीता में ये थोड़ा ही कहा है कि मैं सड़क जाती हूँ, गीता में तो कहा है कि ना जहाँ सूरज चांद सितारों का रो प्रकाश पहुँचता है रोशनी नहीं पहुँचती, मैं वहाँ रुझलो कर रहे बोलो। तो ये तो मैंने दूसरा आंसर कहाँ से कर दिया कि मैं सड़क जाती हूँ? तो ये अर्थ कितने की है? उन्हें देहदारी गुरुओं ने ये अर्थ कर दिया, तो निष्काम सेवादारी हुए अपनी पूजा कराने के लिए परमात्मा को क्या कर दिया? कर्म व्याप्ति कर दी। तो इसको निष्काम सेवा कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी कामना होगी कि हम भगवान बनकर के पूजा लें। अब तुम बच्चे जानते हो बाप क्या समझा, गीता में क्या लिख दिया है और वो सुनाते क्या है? यही तो कि मैं कर्म व्याप्ति हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्व व्यापी हूँ? ये तो गाली है, सब में व्यापक हो जाए। अरे मैं तो एक व्यापी हूँ, एक में प्रवेश करता हूँ, ये सर्व व्यापी होता हूँ, उससे बिल्ली सब में हूँ, जानवरों में भी मेरे अवतार दिखाई दिए कि मैं जानवरों में भी आता हूँ, जानवर जैसे मनुष्यों में भी आता हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो ना, जानवर ज्ञान का सागर होगा क्या? जानवर तो जानवर बुद्धि। मैं जानवरों को पढ़ाने थोड़े जाता हूँ, तो कितनी झूठ है। मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा कुत्ता बिल्ली, इतना झूठ है। ज्ञान तो कोई में नहीं है, सन्यासियों आदि का मान कितना है, झूठी बातें सुनाते हैं और मान मर्तबा देखो कितना जाती है, क्योंकि पवित्र है, तो उनका मान ज्ञान सागर नहीं है क्या? उनका मान क्यों है? क्योंकि प्योर है तो उनका इतना मान है। कारण क्या बताया? पवित्रता। अच्छा, सन्यासी पवित्र है तो उनका मान है। अब तुम भगवान जी महाराज आए हैं तो तुमका पवित्र हो तो तुम्हारा मान नहीं है दुनिया में। जानते नहीं क्या? नहीं जानते? सारी दुनिया जानती है भगवान से इधर पे और भगवान से ज्यादा पवित्र कौन होगा? ये दुनिया वाले की बात है। ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण जो है वो सबसे जाती मान देते हैं बाप को। सबकी बात है, ये सबकी बात है। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो बहुत मान देते हैं। बच्चे बनते हैं और वो सच्चे हैं। सन्यासवादी का कितना मान है? क्योंकि पवित्र है, पवित्र है तो उनका मान है। स्वर्गवाद वाले ज्यादा मानते हैं किसको? बाप को। सन्यासी को नहीं मानते हैं। सतयुग में स्वर्गवाद में बंदे की लाइन होगी हमें लगता है। बंदे की लाइन जो है वो फरकावाद जिला में तो नहीं है। काली हिंदी है क्योंकि हरिद्वार तो नहीं आती है वहाँ। नहीं आती है? अच्छा, भरी हुई आती है खाली आती है? काली इंद्री जब ना हो तो कोई बात हो क्यों नाम भरे गए? और दूर जाओ जब कहाँ गए? भरी हुई आओ। पति बोले गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है। दूसरा कोई गुरु नहीं करना क्या? ये कहावत कहाँ की है? कहते हैं भक्ति मार्ग में कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो ये कहावत कहाँ से शुरू हुई? यादगार त्योहार कहावत है, ये सब है कहाँ की? तो जरूर संगम युग में ही ये कहावत चरितार्थ हुई है प्रैक्टिकल में। क्या? कि परमात्मा ही आकर के पत्नियों का पति और बापों का बाप बनता है, और वो परमात्मा बाप जब बनता है पति बनता है, और बच्चे जब उसके बनते हैं तो उनको अंत में जब संपूर्ण स्टेज होती है तो ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में हमारा पति ही बाप ईश्वर गुरु ईश्वर सभी कुछ है। दुनिया में हमारा सहारा कोई है नहीं। भटक भटक के देख लेते हैं तब अंत में ये निश्चय कर लेते। तो यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु ही पर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। एहसास नहीं कराते, सिर्फ कहते हैं। क्या? दुनिया वाले कहते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ही पर सब कुछ है, एहसास नहीं कराते। और यहाँ बात आकर इस बात का प्रैक्टिकल में एहसास कराए देते हैं, पक्का बुद्धि में ये बैठाए देते हैं। क्या? कि तुम्हारा पति ही बाप टीचर गुरु सब कुछ वो ही है। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी तमो तत्व प्रधान थी। क्या? ये बात कब समझाई जाती थी भक्ति मार्ग में? जब भक्ति तत्व प्रधान थी तब ये बात समझाई जाती थी कि तुम्हारा बाप टीचर गुरु पति ही है तुम्हारा, वो ही तुम्हारा ईश्वर है परमेश्वर है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। और जब भक्ति समय प्रदान होती है तुम ये नहीं दिखाते क्या कि तुम्हारा पति ही सब कुछ है? कह देते हैं पति सब कुछ नहीं है, तुम्हारी परवरिश नहीं करता, तुम नौकरी कर ले, मारो तुम अपने क्या। भक्ति जब सत्व प्रदान होती है तो अनुसैया ने दिखाया क्या कि गुरु कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, लेकिन उसको परमेश्वर की तरह मानो, क्योंकि मिला सब पूर्वजन के अपने कर्मों के अनुसार ही तो वो तुम्हारा पति बना है। पूर्वजन ने ऐसे कर्म किए हैं तुमने तो तुमको ऐसा पति मिला है, तो अब जिस रूप में भी तुमको मिला है क्या करना है तुमको, तुमको उसमें निभाना है। अगर निभा करके पास हो जाओ तो जीतो देखिए बंधन क्यों बना, बंधन किसने बांधा, बंधन तो अपने कर्मों का बंधन होता है, तो ये बंधन बना तो उस बंधन को पूरा करना चाहिए ना, निभाना चाहिए ना। तो कलयुग में ऐसा नहीं सिखाते तमो प्रधान युग में क्या, तो पति तुम्हारा हाँ परमेश्वर है, पति में तो गुरु नहीं था, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं क्या कहा, जब भक्ति की शुरुआत होती है तो गुरु नहीं होते क्या, बात ही रास्ता बताता है बच्चों को, गुरु कोई न वहाँ गुरु होते हैं सतयुग में और न वहाँ कोई सलाह देने वाला मंत्री होता है, मंत्री और गुरु कौन होता है, बात ही होती है। तो भक्ति की शुरुआत में भी गुरु नहीं होते, पति ही सब कुछ होता है, गुरु नहीं करते इन सब बातों को। अब तुम बच्चे समझते हो इन बातों को, सत्व प्रधान भक्ति की भी शूटिंग कहाँ होती है, पर शूटिंग होती है, जब सत्व प्रधान भक्ति शुरू होती है तो बाप के भक्त भी है, तो बाप की प्रजा भी है, तो बाप के बारिस भी है, या बाप के भक्त नहीं है, जब बाप के बनते हैं तो उस समय सत्व प्रधान स्टेज होती है, तो एकदम तमो प्रधान और तो सत्व प्रधान स्टेज होती है, तब उनकी बुद्धि में होता है कि हमारा पति ही गुरु ही सर सब कुछ है। तो ये यहाँ का गायन है सबकी मार्ग में, जो सत्व प्रधान भक्ति कि करना ये सिखाते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ही सब कुछ है,
भक्ति
के आदमी भक्ति के आदमी ही तो ऐसा मानते हैं, ये मान्यता चलती है, फिर बाद में जब भक्ति समय प्रदान हो जाती है तब तो ढेर गुरु किए जाते हैं, पति भी बदल देते हैं, तो समय प्रदान धर्म की शुरुआत हो जाती है, कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्यों डर जाते हैं, हैं? डरने की क्या बात है, क्यों भाई, इसलिए डर जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आई है तो ऐसा न हो कि हमारी घरवाली को, हमारी घरवाली उद्यान सुनाए दे और भगवान को बनाए दे, तो हम तो कब दिन बिना रहे हैं, क्योंकि समझते हैं ये तो भाई बहन बनाती है, अरे प्रजा पिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, हम तो तुम्हें ब्रह्मा की औलाद बनाए रहे हैं, ब्राह्मण बनाए रहे, तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कलयुग में तो सब शुद्ध हो जाते हैं, हम तो झूठे ब्राह्मणों को भी सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद बनाए रहे हैं, कैसी कभी तो डर जाने की क्या बात है? ब्रह्मा जी औलाद बनोगे तो आपस में क्या हो जाओगे? भाई बहन तो हो जाओगे ना, तो अच्छी बात है ना। बीते सर कबर कर लेते हैं, ब्रह्मा कुमार बनेंगे तो सर कबर कर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे स्वर्ग में जाते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम बीते बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। दोनों कौन? यहाँ तो ब्रह्मा का ही टाइटल हो गया प्रजापिता। तो ये तुम्हारी गलती है, जो ब्रह्मा के आगे प्रजापिता का टाइटल नहीं लगाते। बाबा ने तो मुर्गी में डायरेक्शन दे दिया
है।
ये तुम्हारी कहनाउट से बाबा कहने लगे, बाकी तुम्हें तो बाबा ने समझा दिया है कि तुम अपने को ब्रह्मा कुमार क्यों लिखते हैं? हैं? तो बात के लिए तुम बी के ईश्वर का बर्ता लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम बी के बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन। दोनों कौन? स्त्री पुरुष है। दोनों कहते हैं हम भाई बहन। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है तो कहते हैं हम भाई बहन। कहते हो है? दोनों कहते हो भाई बहन है? है? तुमने एक ने कह दी कहाँ से कहा उसे क्यों राम कुमारी सुनाओ भैया कहाँ राम कुमारी कहाँ है? बाबा पूछ रहे तो बता दो है? तुम्हारे भैया कहाँ है? तुमने बहुत देर करी। अच्छा राज बहादुर तुम बताओ तुम्हारे भैया कहाँ है? ये कहा भैया है बताओ है? तुमने भैया बनो है तुम कह दिए। हाँ हाँ बहन हाँ कह दो मालूम पड़ गए कौन कौन झूठो कौन सच्चे हो। अरे जब नाम है राजबहादुर राजबहादुर तो राजबहादुर राजबहादुर बहादुरी नाऊ है इसको तो बोलो बोलो। अरे परसेंटेज कौन हो गई भाई? तो दोनों कहते हैं हम भाई बहन। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है, हम एक बात के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? ये तो महान बात है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में बाप ने रखी हुई सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो क्या करते हैं? वो तो छोड़ के चले जाते हैं। तुमको कोई छोड़ना छोड़ना नहीं भाई बहन बन जाओ। कोई भाई अपनी बहन को छोड़ देता है क्या? बात छोड़ने की बात ही उनका तो निवृत्ति मार्ग है, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस चीज की दुनिया का रस्म रिवाज को छोड़ करके उस दुनिया को ही भूल जाना। कौन सी दुनिया को? जिन्हें चीज की रस्म रिवाज तुम सड़क के मालिक थे, फिर रावण ने तुमको कितना चीज की बनाया। तो ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए? 84 जन्म लिए है ये तो अच्छा हम कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया होगा तो यहाँ ठहरे लाएगी क्या था? क्या हाँ भागने वाले समझ ले क्या? जिन्हें पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो यहाँ ठहरेंगे। हाँ अब कृष्णा माता घर है ना जानवारी, कृष्णा माता घर है ना जानवारी।
हाँ बुद्धि से ठहरेंगे, कोई शून्य में ठहरने की बात बात नहीं है। 84 जन्म नहीं लिया होगा तो यहाँ ठहरेगा नहीं, कहाँ बाबा के पास उसकी बुद्धि ठहरेगी नहीं, इधर उधर भाग जाएगी। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं, ये जरूर दूसरे धर्म का है या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के कुछ न कुछ रहा जरूर है। ये स्वर्ग में नहीं आ सकेगा, 84 जन्म लेने वाले स्वर्ग में नहीं आते क्या, जो न लेने वाले होते हैं 84 जन्म लेने वाले क्या स्वर्ग में नहीं आएंगे, आएंगे तो। लेकिन बाप जिस स्वर्ग की बात करते हैं, जिस स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं 16 संपूर्ण का, उसमें नहीं आएगा। हाँ सच्चे देवता बनेंगे, सच्चे देवता नहीं बनेंगे, कन्वर्ट होने वाले बनेंगे। तो पद भी तो प्रजा में जन्म लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद होते हैं, प्रधान प्रजा में भी कोई फर्स्ट क्लास प्रजा और कोई फोर्थ क्लास प्रजा। इनकी बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान आकर के सिंध धर्म में स्थापन करते हैं। क्या बात, ये पहचान है, भगवान आकर के करेगा क्या, ऐसा नहीं आके चला जाएगा और फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी सिंह जन स्थापन करते रहेंगे, राजा ही स्थापन करते रहेंगे, नहीं। भगवान आता ही है हम बच्चों के लिए, राजा ही राजधानी स्थापन करने के लिए, राजधानी स्थापन करके सब वापस जाता है, हम लोग हम बच्चों को वापस लेकर जीतक तो बैकुंठ का माय लेते थे। वो कोई राजा ही स्थापन नहीं करने वाला है, स्थापना बाप करते हैं। क्या श्रीकृष्ण बैकुंठ का मालिक बनता है, विष्णु का मालिक नहीं बनता, और उस बैकुंठ की स्थापना कौन करते हैं, बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे श्रीकृष्ण ने ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है, तुम पढ़ करके पद पा लेते हो, फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़ेंगे क्या। ये भी एक पहचान बताई, कोई कहे हमें तो राजा ही बाबा दे गए, तो जब राजा ही बाबा दे गए तो फिर गीता ज्ञान क्यों पढ़ रहे, फिर तुम्हें गीता ज्ञान पढ़ने और पढ़ाने की दरकार फिर तो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात तुम झूठ बोलते हो कि हमें बाबा राजा ही दे गए, अभी नहीं हुआ तो वो कौन करेगा, वो बेहद की राजा इसको भी स्थापन करोगे, हद की राजा इसको बाबा दे दे, ऐसी बात। अरे तो बाबा बेहद का बाप है तो बेहद की राजा ही आकर के देगा, हद की राजा ही छोड़े देगा, हद की राजा ही तो लोग ज्ञान से सदगति मिल गए, फिर ज्ञान लेने की क्या दरकार, जब सदगति हो जाए फिर तो ज्ञान लेने की दरकार और देने की दरकार रहती। जितना पुरुषार्थ उतना उनसे कभी पाएंगे, जितना पुरुषार्थ कभी पहले किया था वो अभी भी करते रहते। साक्षी होकर के देखना, ब्राह्मण ब्राह्मण को भी देखना है, ब्राह्मणी को भी देखना है, इतने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है, मान जी बहुत कोशिश करनी है ऊंचे ऊंच बनने की। मूल बात है सम प्रधान से सत प्रधान बनना, ये समझने की बात है ना, कि सम प्रधान से सत प्रधान कैसे बनते, दृष्ट व्यवहार में भी रहना है। ऐसे नहीं सम प्रधान से सत प्रधान बनने के लिए हाँ दरबार है छोड़ जाओ, बात को याद करना है तो पावन बन जाएंगे, दरबार को छोड़ जाने से पावन नहीं बनेंगे। यहाँ सब पति हैं, कहाँ? इस दुनिया में चाहे गृहस्थी हो चाहे संन्यासी हो, है सब पतित। तो ये गलतफहमी हो जाए, अरे गृहस्थी में रहेंगे तो पतित होते रहेंगे तो कोई फायदा फायदा नहीं, इसलिए थोड़ा था नहीं। यहाँ तो सब पतित है, इसमें तो दुख ही दुख है। किसने इस दुनिया तो पता राज्य कब था किसको पता नहीं है। ऐसे नहीं कि हम भगवान के पास पहुंच गए तो सुख के राज्य में पहुंच गए, तो राम राज्य में पहुंच गए, नहीं। वहाँ भी राज्य किसका है? वहाँ भी माया रहती भूली रहती है, राज्य किसका हो जाता? भगवान के घर में भी किसका राज्य हो जाता? हाँ, माया रहती भूली रहती है तो माया रहती का राज्य हो जाता। यहाँ सब पतित है, सब दुखी है, कहते हैं हे भगवान हे राम ये दुख क्यों दिया? तो क्या हे भगवान हे राम सामने बैठे हैं? बच्ची नारी में कहते हैं ना, हे भगवान हे राम हमको ये दुख क्यों दिया? तो हे राम हे भगवान कब कहा जाता है? सामने हो तो कहा जाता है, बच्ची नारी में तो सामने होते ही, तो यादगार कहाँ की? यादगार है कुछ बच्चे हैं श्रीमत पे नहीं चलते हैं, अपन ही चलाते हैं, तो फिर माया उनको दुख की दुनिया में ढकेल देती है। सब कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राम हे भगवान तुमने हमको ये दुख क्यों दिए? अब भगवान तो जिसको दुख देते नहीं, भगवान तो सबको सुख ही सुख देते हैं, रावण दुख देते हैं। तो ये भी गलत फहमी चलती है कि तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। तो भगवान कोई सुख दुख दोनों नहीं देता, ये तो अपने अपने कर्मों का फल फल मिलता है। चाहे ब्रह्मा कुमारी क्यों न बन जाए, ब्राह्मण बनने के बाद भी कर्म तो अच्छे बुरे दोनों करते हैं ना, तो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल सब पाएंगे। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता। अब तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा क्या? जहाँ सुख की दुनिया होगी, बाप की छात्र की दुनिया, उसमें कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा। और अभी रावण राज्य में सब पाते हैं अलग अलग, कोई धर्म नहीं होगा वहाँ। फिर बाद में और धर्म आएंगे, तुम धर्म कहाँ भी चले जाओ, पढ़ाई साथ है और मन मना का लक्ष्य तो मिला हुआ। लक्ष्य कौन सा मिला हुआ है? ये लक्ष्य बुद्धि में रहे कि हमको मन मना भव बनना है। मन मना भव बने, मन मना भव, मत मन मेरे, मना मने मन में, भगवान में समा जा। तो भगवान कहते हैं मेरे मन में समा जा। तो सागर में अगर कोई समा जा, एक लोटा पानी सागर में डाल दिया जाए तो क्या हो गया? सागर ही हो गया। तो ऐसे ही कोई आत्मा अगर अपने मन के अंदर जो भी संकल्प चलते हैं वो सब ज्ञान सागर में अपने संकल्पों को डुबा दे, तो उसके संकल्प भी कैसे करने चाहिए? जो बाप के संकल्प है तो बच्चे के संकल्प, तो संकल्पों तक समानता है होनी चाहिए, ये लक्ष्य रहना चाहिए। ऐसा हो कि बाप के संकल्प से भी कोई हमारा संकल्प टकरा जाए तो लक्ष्य से हम दूर हो गए। बाचा की तो बात ही दूर, बाचा के टकराने की तो बात ही नौबत ही आए, और करुणा से टकरा कर ये तो कभी हो नहीं होंगे। तो ये तुम्हारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? मन मना भव का ये तुम्हें लक्ष्य मिलेंगे। अगर ये लक्ष्य धारण करेंगे तो लक्षण लक्षण आ गए। अगर लक्ष्य ही धारण नहीं किया तो हमें बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, बातें ना अच्छी लगती, उनके बुरे संकल्प करते। बाप के लिए किसी बच्चे के प्रति बुरे संकल्प से नहीं, बाप कभी अपने बच्चों का कल्याण चाहता है क्या? चलो प्रजा पिता ही सही, प्रजा पिता अगर अपने बच्चों का कल्याण चाहे तो फिर नेक्स्ट टू गार्ड उसके बाबा उसको क्यों कहेंगे? प्रजा पिता को नेक्स्ट टू गार्ड क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जितना कल्याणकारी परमात्मा है उतना तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई कल्याणकारी है तो प्रजा पिता वही बोले हैं, क्योंकि पांच करोड़ मन से आते ना उसी के, उसी बीवी के बच्चे हैं, उसी के पक्के हैं, वो प्रजा पिता अपने स्वरूप को सबसे पहले पहचानता है, और जो अपने स्वरूप को पहचान लेगा वो अपनी रचना से भी नफरत नफरत नहीं कर सकता। तो मंगला भर का लक्ष्य तो मिला हुआ है, बाप को याद करो, बाप से हम सरसा वर्षा ले रहे हैं ये भी याद नहीं करते, ये याद पक्की चाहिए क्या कि हम बाप से सरसा वर्षा ले रहे हैं, ये याद पक्की के लिए होगी है? जो ये समझेंगे बाप आया और चला गया उनको ये याद पक्की होगी, या ये जो समझेंगे कि बाप आया हुआ और हम उसे बरसा ले रहे हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनको ये याद पक्की होगी? हाँ, जिनके सम्मुख बाप बैठा हुआ उनको ये बात पक्की होगी कि बाप से हमको बरसा लेना है, जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि बाप आया और बाप चला गया, तो चला गया तो बस बात मिलाएगी, तो अब क्या मिलेगा? फिर सत्तापन तो होना है, हो ही नहीं सकता, तो फिर अंत मत तो गलती हो जाएगी। अगर अभी ये बुद्धि में पक्का बना रहेगा कि हमको बाप से वर्षा लेना है हम ही बाप से वर्षा लेंगे, लेकर ही छोड़ेंगे, तो ये संकल्प पक्का पक्का होते होते क्या होगा अंत में? अंत मत तो गलती हो जाएगी, चल में पहुंच जाएगी। अच्छा नीचे नीचे सुखी मिले बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद क्या है गुण ऐसे बाबा सभी बच्चे में बहुत बड़ा है, कहा से पहले ही बताए दे कैसे बच्चों को याद क्या नीचे नीचे बच्चे नीचे नीचे बच्चों को याद क्या क्यों सभी बच्चों को याद क्या क्यों है? वह तो दुनिया है, दुनिया में देख सकते हैं तो आप आपको कड़ुओ कड़ुओ छू छू और भगवान आए कि नहीं बात करिएगा है? तो भगवान जी साधारण तन में आता है, साधारण तन में आता है तो परम भी कैसे करेगा? साधारण तन करेगा, तो नीचे नीचे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार क्या याद क्या है गुड मॉर्निंग कौन से बाप की? मात पिता बाप दादा का तो शरीर में होंगे कि रूहानी बिंदु दादा शरीर में होंगे, याद क्या है गुड मॉर्निंग नीचे नीचे बच्चों को, और रूहानी बाप हो तो रूहानी बाप के लिए तो क्या नीचे और क्या करिए, तो रूह वाली बात है, रूहों का बात है, रूह है चाहे कड़वी हो और चाहे नीची हो, रूह है जो है वो तो रूह है, वो तो न नीची और न कड़वी, तो रूह वाली बात की रूह वाली बच्चों को नमन, वो भी झुकता किसको है? रूहानी यानी आत्मिक स्टेज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको झुकता है नमन करता है, और जो बेअभिमानी की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको रूहानी बाप भी झुकने वाला नहीं।